तथा गाय पर पाद प्रहार किया था।
मतलब एक से एक उसे हम कहें वो जघन्य कृत्य था कि गाय और बैल पर लात मार रहा है। शूद्रों ने भी अधम उसको बोला और उसके ऊपर एक अपराध ये था कि उसने राजा का शूद्र होते हुए, शूद्र से भी नीचे होते हुए उसने राजा का वेश धारण किया। जैसे आप देखते हैं जो राजसत्ता के चिन्ह हैं उनको आप धारण नहीं कर सकते। कोई आदमी जो है वो पुलिस की यूनिफॉर्म नहीं डाल सकता, ठीक है ना, कोई मिलिट्री की यूनिफॉर्म नहीं डाल सकता, दैट इज एन ऑफेंस। तो कोई राजवेश वैसा कैसे धारण कर सकता है? तो इतने कुछ होने के बावजूद भी शौनक ऋषि पूछते हैं कि क्यों महाराज परीक्षित ने उसे केवल दंड क्यों दिया, अर्थात उसका वध क्यों नहीं किया, ऐसे तो तुरंत मार देना चाहिए। ये शौनक ऋषि पूछते हैं। और उसके साथ एक राइडर लगाते हैं कि मेरे इस प्रश्न का जवाब दें, अगर ये बात कृष्ण कथा से संबंधित हो। ये एक भक्त का व्यवहार है कि वो कृष्ण कथा के सिवाय और कुछ सुनना नहीं चाहता। अगर वैसे तो बात है तो ठीक है, वो उनके प्रश्न का उत्तर ना दे। उन्होंने इसमें यही बात अंतर्निहित है कि अगर ये कृष्ण कथा से संबंधित नहीं है तो उसको उत्तर ना दे। इसी से आगे जो आज का श्लोक है, ये पांचवा श्लोक था, जो आज का श्लोक है वो उसी से आगे बढ़ता है कि भक्त का व्यवहार जो है वो कैसा रहता है। इस श्लोक में इस बात की चर्चा होती है कि कैसा एक भक्त का आचरण होता है। तो पहले श्लोक पढ़ते हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अथवाश पदम भोज मकरंद लिहां सताम अलापै आयुषो यद सद्व्ययः अथवाश्च पदाम्भोज मकरन्दलिहां सताम् किमन्ययसत् अलापै आयुषो यद् सद्व्ययः अथवाश्च पदाम्भोज मकरन्दलिहां सताम् किमन्ययसत् अलापै आयुषो यत् सत्वयः। अथवाश्च पदाम्भोज मकरन्दलिहां सताम् किमन्ययसदालापै आयुषो यद् सद्व्ययः। अथवाश्च पदाम्भोज मकरन्दलिहां सताम् किमन्ययसदालापै आयुषो यद् सद्व्ययः। अथवाश्च पदाम्भोज मकरन्दलिहां सताम् किमन्ययसदालापै आयुषो यद् सद्व्ययः। अथवा अन्यथा अश्च उनका भगवान कृष्ण का, पदम भोज चरण कमल, मकरंद लिहाम कमल पुष्प के मधु को ताकने वाले, सतान निरंतर जीवित रहने वालों के मान्याय अन्य किसी वस्तु से क्या लाभ, असत भ्रामक आलाप विषय प्रसंग आयुषः आयु में यत जो है, असत व्यय जीवन का अपव्यय। अनुवाद की पुनरावृत्ति कर सकते हैं मेरे पीछे जो है, भगवान के भक्त भगवान के चरण कमलों से प्राप्त मधु के चाटने के आदि हैं, उन कथा प्रसंगों से क्या लाभ जो मनुष्य के बहुमूल्य जीवन को व्यर्थ नष्ट करें। इसके आगे उपाध्याय तात्पर्य लिखते हैं, तो अनुवाद हम तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रपात द्वारा, जगत गुरु श्रील प्रपात की जय। भगवान कृष्ण तथा उनके भक्त दोनों ही दिव्य स्तर पर रहते हैं, अतः भगवान कृष्ण तथा उनके शुद्ध भक्तों की कथाएं समान रूप से उत्तम होती हैं। यद्यपि कुरुक्षेत्र का युद्ध राजनीति तथा कूटनीति से भरा हुआ है, परंतु इसकी कथाएं भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हैं, अतः भगवद गीता सारे विश्व में पूजित है। राजनीति अर्थशास्त्र या समाज विज्ञान जो संसारियों के लिए भौतिकता में हो, उनके उच्छेदन की कोई आवश्यकता नहीं है। शुद्ध भक्त के लिए जो वास्तव में भगवान से जुड़ा है, ऐसी संसारी वस्तुएं दिव्य होती हैं। यदि वे कृष्ण या उनके शुद्ध भक्तों के साथ जुड़ी हो, हम पांडवों के कार्यकलापों के संबंध में कह सुन चुके हैं और अब हम महाराज परीक्षित की कथाओं के विषय में बातें कर रहे हैं, किंतु ये सब कथाएं भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हैं, अतः ये सब के सब दिव्य हैं और शुद्ध भक्त इन्हें बड़ी रुचि से सुनते हैं। हम इस बात को भीष्म देव की स्तुतियों के प्रसंग में पहले ही बता चुके हैं। हमारी आयु बहुत लंबी नहीं होती और ऐसा भी कुछ निश्चित नहीं है कि हमें कब अगली मंजिल के लिए हर वस्तु को छोड़ने के लिए आदेश मिल जाए, अतः यह हमारा परम धर्म है कि हम कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी विषय में एक क्षण भी व्यर्थ ना बिताएं। कोई भी विषय कितना ही रोचक क्यों ना हो, यदि वह कृष्ण से संबंधित नहीं है तो सुनने योग्य नहीं होगा। आध्यात्मिक ग्रह गोलोक वृंदावन जो भगवान कृष्ण का सनातन धाम है, कमल पुष्प के गुच्छे के आकार का है। जब भगवान किसी एक भौतिक ग्रह में भी अवतरित होते हैं, तब वे अपने निजी धाम को यथारूप में प्रकट करके ही ऐसा करते हैं। इस प्रकार उनके चरण सदैव उसी कमल दल के बड़े गुच्छे पर रहते हैं। उनके चरण कमल पुष्प के समान ही सुंदर हैं, इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के पांव कमल स्वरूप हैं। जीव वैधानिक रूप से शाश्वत है, वह भौतिक शक्ति से संपर्क में रहने के कारण जन्म तथा मृत्यु के भंवर में पड़ा हुआ है। ऐसी भौतिक शक्ति से छूटने पर जीव मुक्त हो जाता है और भगवत धाम जाने के योग्य बन जाता है। जो लोग अपना शरीर बदले बिना सदा सदा के लिए जीवित रहना चाहते हैं, उन्हें कृष्ण तथा उनके भक्तों की कथाओं के अतिरिक्त अन्य किसी कथा में अपना बहुमूल्य समय नहीं गवाना चाहिए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं सार्वभौमेन भूतले संरूपः कदामयं ददाति सदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीरूपपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं त्रिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशगोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तत्पकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी दृष्टान सुते देवि प्रणमामि हरि प्रिय वाक्षाकल्पत्रुभ्य कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण नमोम शुभाय कृष्णाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि हरे कृष्ण। तो तात्पर्य कृपा जी क्या लिखते हैं श्लोक में, सुखदेव गोस्वामी क्या वर्णन करते हैं कि भगवान के भक्त भगवान के चरण कमलों से प्राप्त मधु के चाखने के आदि हैं, उन कथा प्रसंगों से क्या लाभ जो मनुष्य के बहुत मूल्य जीवन को व्यर्थ नष्ट करे। अर्थात जो भक्त है वो तो भगवान की कथा में रुचि लेते हैं, क्यों? क्योंकि भगवान शाश्वत है, भगवान की कथा भी शाश्वत है, और जो उस कथा को सुनेगा वो भी शाश्वत को प्राप्त होगा। जीवात्मा वैसे तो शाश्वत है, कोई बोल सकता है जीवात्मा कैसे शाश्वत है, तो उसे अलग से शाश्वत की क्या जरूरत है, वो तो पहले शाश्वत है। पर यहाँ पे समस्या ये है कि हम जिस स्वरूप में बैठे हैं हमें उस चीज़ का भान नहीं है, हमें वो चीज़ याद नहीं है कि वो किस स्वरूप में है। जैसे हम ऐसा समझें कि किसी बड़े अच्छे खानदान का बहुत सच्चरित्र परिवार का बच्चा किसी बदमाश के साथ लग जाता और बदमाशी में संलिप्त हो जाता, तो अब वो बदमाशी कर रहा है उसको वो बात याद ही नहीं है कि वो किस खानदान से संबंधित है, बस उसी में वो सोचता है यही है बस कि बदमाशी करना मेरा काम है और यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, उसको वो याद नहीं है। तो जब उसको मूल बात याद नहीं है तो उसके खानदान से किसी खानदान से याद हो जाएगा, अभी तो वो बदमाशों के खानदान का है, तो आप बोलेंगे यहाँ क्या बदमाशी है, यहाँ बदमाशी ये है कि जो शाश्वत जीव है जीवात्मा है जो कि कृष्ण का अंश है, भगवान भगवद गीता में बताते हैं ममई वांसो जीव लोके जीव लोके जीव होता सनातन है, पर समस्या क्या है मनय स्थानी इंद्रियाणी पर प्रतिष्ठानी कर सके। यहाँ पे समस्या क्या है कि मन सहित छह इंद्रियों के साथ वो प्रकृति के साथ जुड़ा है, तो संघर्ष कर रहे हैं वास्तव में। देखिए क्योंकि हम आपने देखा होगा इतने सारे लोग सुबह आपको पार्क में मिल जाएंगे, सुबह 4 बजे उठ के जब हम मंदिर में आ रहे होते हैं तो ऐसा नहीं है कि सारे लोग सोए होते हैं, सारे लोग नहीं सोए होते, बहुत सारे लोग अपने मतलब अपने हिसाब से तैयारी करके और पार्क में जा रहे होते हैं। उसके पीछे क्या है, वो जो शाश्वत पाठ जो हमारा मूल स्वभाव है वो उसका एक लक्षण है। यहां पर किस तरह की शाश्वतता है, इस शरीर को बनाए रखने की शाश्वतता, ये मेरा शरीर जो है ये शाश्वत रहे, ये स्वस्थ रहे, ये परमानेंट रहे। सारी रिसर्च चल रही है, कितनी सारी रिसर्च चल रही है, अरबों डॉलर खर्च हो रहा है। रिसर्च क्या चल रही है कि आदमी को हम मरने से बचा लें। एक बार तो अमेरिका में बहुत बड़ा प्रपंच खड़ा हुआ था, क्या प्रपंच था कि एक कंपनी ने ये घोषणा कर दी कि बहुत जल्द साइंस जो है इस बात का समाधान कर लेगा कि जीवात्मा मनुष्य को पुनर्जीवित कर दिया जाए, एक बार मर गया कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको रिवाइव कर लेंगे। तो साइंस इससे बहुत नजदीक है। तो क्या करें, आप ऐसा करो जिसके घर में भी मर जाए उसको सेफ डिपॉजिट में हमारे पास जमा करा दो। जैसे आपने देखा ना कोल्ड स्टोरेज होता है, तो ये मतलब समथिंग सॉर्ट ऑफ ए कोल्ड स्टोरेज, क्योंकि ठंडे में प्रिजर्व हो जाता है अपने आप, ठंडे में प्रिजर्वेशन है, गर्मी में प्रिजर्व नहीं हो सकता। तो उन्होंने क्या किया कि आप इतने पैसे हमें दो और अपने मुद्दे को हमारे पास जमा करा दो, तो बहुत शीघ्र ये होने वाला है कि उसको रिवाइव कर लेंगे। अब अपनों को कोई जाने नहीं देना चाहता, जिनको हम अपने मानते हैं उसमें अपना शरीर है और बाकी इस शरीर की एक्सटेंशंस हैं। एक्सटेंशन क्या है, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरी मम्मी, मेरे पापा, जिनको मैं अपने को मानते, मेरा दोस्त। नहीं तो अगर ऐसा ना हो तो आदमी क्यों रोए, सबको मालूम है आया है तो जाएगा। भगवान ने भगवद गीता में बोला जातक से शुरू हो तू, तो फिर किस लिए रोते, तो मालूम है कि भाई मरना शाश्वत है। क्यों रोते हैं, क्योंकि उसको अपना मानते हो, ये चाहते हैं कि ये जाए नहीं। अब उस चीज को उन्होंने एक्सप्लोइट किया, और सिर्फ उन्होंने नहीं किया, बहुत सारे छात्र धर्म चल रहे हैं जो इस चीज को एक्सप्लोइट कर रहे हैं। एक क्रिश्चियंस में आता है, नाम मुझे अभी रिकलेक्ट नहीं हो रहा है, उसमें क्या है कि वो बोलते हैं आप हमारे पंथ में आइए तो आपका जो परिवार है वो तो सारे परिवार को ले आइए हमारे पंथ में, आपको अगले जन्म में ये सारा युवा मिलेगा, आप अपने इस मित्रों सहित आइए धारी हमारे पंथ में, हम आपको ये गारंटी देते हैं कि आपको अगले जन्म में सारे के सारे यू नहीं मिलेंगे। अब देखिए एक कहावत है कि वो ही मेरे मन में और वो ही दादा के पतरे में, जो चाहिए था इच्छित मिल गया ना, तो लोग उसे जाते मूर्ख बनाते। पर जोलेश गोपाल कृष्ण संघारा से ये लेक्चर में जिक्र किया था, पर वो क्या है, बदमाशी जो है उसको छुपा के करना होता है, बदमाशी को खुलने में थोड़ी करता, क्योंकि है तो बदमाशी अंतरात्मा को उसे भी मालूम है ये बदमाशी है, तो उसके लिए क्या है छुपा के चाहिए। पर जो बदमाशी नहीं कर रहा उसको क्या समस्या है, वो खुले में करेगा। इसलिए हम लोग हमारी परंपरा में जो है गुरु दीक्षा देते हैं तो खुले में महामंत्र है, गुरु दीक्षा में मंत्र क्या दिया, ये महामंत्र है, खूब करो खूब फर्क के बात हो, कोई समस्या नहीं है। उसको छुपाने को क्या है, क्यों छुपाया जाए, भगवान का नाम दे रहा था तो छुपा रहा भाई। तो वहां पे क्या समस्या है कि वो जब तक उनके दल में आप शामिल नहीं हो जाते तब तक आपको अंदर भी कुछ नहीं देते। आप आइए सुनिए क्योंकि वो क्या कह रहे हैं, उनके हिसाब से बोलिए, पर अंदर क्या हो रहा है ये नहीं आपको पता चलेगा। पर महाराज बोलते हैं हमको सबको भीतर तक दिखाते हैं, सबको सिखाते हैं, जो आते हैं उसको गाइड भी टूर कराते हैं, क्योंकि भी आप नथिंग टू हाइड। वो क्या करते हैं, जब तक आप उनके दर्द में ऑफिशियली शामिल नहीं हो जाएंगे तब तक आपको अंतरंग में क्या है वो नहीं दिखाते। तो ऐसे ही वहां का तो हमने चर्चा की, ऐसे यहां भी है जो बोलते हैं मतलब कि आप हमारे उसमें आइए तो तभी आप बचेंगे, बस अभी के लिए समाप्त होने वाला है और सब प्रलय होने वाली है, आप हमारे दल में आ जाइए फटाफट, ज्यादा समय नहीं है आपके पास। ये मतलब ये क्या होता है, दिस इज ए मार्केटिंग ट्रिक। मार्केटिंग में क्या करते हैं भाई, बहुत थोड़ा सामान बचा है, लास्ट टू पीस इज लेफ्ट ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, हरी रशक, आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट की जाती है। क्यों, दैट इज ए मार्केटिंग गिमिक, ताकि लोगों को लगेगा ये कम है, सारी बिक्री है तो मैं ही बावला हूँ, तो पीछे टूट गया तो मैं भी चावल डाल के खरीद लें, तो ऐसे में उसमें फटाफट ये खत्म होने वाला है, तो सब फटाफट आ जाओ हमारे उसमें। और क्या झांसा है कि आदमी कभी आदमी की योनि से बाहर नहीं जाएगा, इस गारंटी हाथ में देते हैं। जबकि भगवान ने भगवत गीता में बार बार बोला है उद्धव के संत सर्वथा मध्य कृष्ण की राजसा जघन्य गुरु प्रतिष्ठा अधों के शक्ति का अंश है, तो वो मस्का लगा देते हैं और बिल्कुल बुद्धि के स्तर पर समझाते हैं। सारी भगवद्गीता को भी बुद्धि के स्तर पर समझाते हैं, तो लोग झांसे में आ जाते हैं। तो पर सारा उसके पीछे मंतव्य क्या है कि हम लोग ना ही मरना चाहते हैं और ना ही हमारे जो अपने दिन को हम मानते हैं उनसे बिछड़ना चाहते हैं। तो उससे भी इतना पैसा अर्थ बालक खर्च हो रहा, क्या कर रहे हैं, लॉन्जेविटी बढ़ाने के लिए, उम्र बढ़ाने के लिए, और लगे हुए हैं कि हमने ढूंढ लिया, अभी हमने फाइनली गोल्ड पार्टिकल ढूंढ लिया है। ये लेटेस्ट है, आप लोगों ने जो टी वी देखते हैं उन्होंने देखा होगा, मैंने भी जस्ट प्रभुजी ने बताया था सीवी के चक्कर में रहते हैं, प्रभुजी ने बताया था कि देयर इज समथिंग इंटरेस्टिंग। अब उसमें कितना खर्च हुआ, अब वो खरबों डॉलर खर्च हुआ है उस जरासे पार्टिकल को देखने के लिए। उसे क्या होगा, इतना पैसा अगर भगवान के प्रचार में लगाते तो जिन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया है उसकी जिंदगी सुधर जाती, गोल्ड पार्टिकल ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं थी, गोलोक मिल जाता सीधा सीधा। पर नहीं, ये क्या है, ये वैक में अपव्यय है, जहां पे जो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं यत असत व्यय है, कि ये पैसे का भी अपव्यय है। और कितने साल, कितने सालों से ये लगे हुए हैं। पहले ये एक्सपेरिमेंट एक बार उन्होंने प्रयास किया था बिग बैंग थ्योरी को निकालने के लिए, बिग बैंग थ्योरी कैसे हुई उसके लिए उन्होंने कहा था कि सब जीरो पे या एब्सोल्यूट जीरो पे, ना सब जीरो, एब्सोल्यूट जीरो पे जब टेम्परेचर चला जाएगा तब हम डेमोन्स्ट्रेट कर पाएंगे। जो साइंस के जानते हैं वो समझ सकते हैं मैं क्या बता रहा हूँ। तो उन्होंने एब्सोल्यूट जीरो के लिए एक स्वतंत्र ये सारी व्यवस्था की वेस्ट में और एक्सपेरिमेंट किया, टेम्परेचर माइनस में गया काफ़ी नीचे तक, ऐसा नहीं कि माइनस में नहीं गया, टेम्परेचर जाता नॉर्मल कोर्स में जाता, इनके एक्सपेरिमेंट में भी गया, पर एब्सोल्यूट जीरो है कुछ माइनस 200 समथिंग, हाँ 273, हाँ तो माइनस 273। अब क्योंकि ये भौतिक चीज़ें अब धीरे धीरे भूल गई हैं, मैं साइंस स्टूडेंट रहा हूँ पर उससे कोई फायदा नहीं है इसलिए भूलता, तो माइनस 273 होता। और ये कुछ 100 के माइनस तक गया और उसके बाद इतना नीचे से टेम्परेचर एकदम उठा और बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया, तो इनको हंस उड़ गए, कुछ समझ में नहीं आया ये क्या होने वाला है, ये बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गया तो ये तो विस्फोट हो सकता है और हमारा सब कुछ चौथा हो जाएगा। तो सारे लोग वहां से भागे, उसको डंप कर दिया और आज तक उसकी कोई एक्सप्लेनेशन उनको नहीं मिली है कि सब जीरो टेम्परेचर से ऐसा क्या हुआ कि वो बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच गया, टेम्परेचर नीचे कैसे राइज हुआ, एकदम ऐसा राइज हुआ कि देखते रह गए। तो ये सब क्या है, ये जीवन का अपव्यय है, ये असत व्यय है, जीवन का अपव्यय। तो भक्त क्या है, भक्त किस तरह से उसको देखते हैं कि जीवन का अपव्यय ना हो, और उसके अलावा जो भी हम चर्चा करते हैं उसको सुखदेव गोस्वामी क्या बोलते हैं कि अन्य असत आलाप है, वो क्या है, असत आलाप है। उसमें से क्या निकलेगा, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य मात्र यही है कि हम अपनी उस इच्छा की पूर्ति करें जो हमारे वास्तविक स्वरूप से निर्गत है। वो इच्छा क्या है, शाश्वत होने की इच्छा, ये सब की है। कौन है, तो कोई नहीं मिलेगा आपको, किसी योनि में नहीं मिलेगा, सिर्फ मनुष्य योनि में नहीं, किसी योनि में भी। आप सूअर जो है वो विस्ता खा के भी प्रसन्न है, आप उनको बोलो फिर को सूअर की योनि से निकाल देता हूँ, शायद जिंदगी होते थे, ओहो तो कहीं का नहीं है, देखो आप प्रयास करते, वो एकदम दौड़ेगा वहां से, बोलेगा नहीं मुझे नहीं चाहिए। इसके लिए आपने सुना होगा कि इंद्रदेव को श्राप मिला था और वो शुक्र के योनि में आ गए थे, तो नारद जी ने जब देखा कि वो इंद्रदेव यहाँ है तो उन्होंने कहा चलो अभी आपका हो गया, ले चलते हैं। अरे बोलो मेरे क्या समस्या यार, मेरी फैमिली आई एम इंजॉइंग। तो हरेक योनि में यही स्थिति है, तो मनुष्य योनि में भी यही स्थिति है, पर मनुष्य योनि और बाकी योनियों में फर्क है। क्योंकि मनुष्य योनि जो है वो बाकी योनियों के बराबर नहीं है, वो विशेष है। और उसमें विशेषता क्या है, आपने उसको बहुत बार सुना होगा, आहार निद्रा भय मैथोनम से समान बेहतर पशु भी नाना, कि खाना सोना और बच्चे पैदा करना और अपना बचाव करना, ये चार योनियां तो आपकी चार क्रियाएं तो बराबर है। तो मनुष्य में विशेष क्या है, वो विशेषता क्या है, किस बात पर मनुष्य विशेष है? धर्म ही कैसा मधु को विशेष हो, धर्मे नहीं ना पशु दुष्ण। तो उसमें एक धर्म ही तो है, उसको जानना ही उसके जीवन का लक्ष्य हुआ, क्योंकि तो वही तो एक विशेष है, बाकी तो सारे ही करते हैं। आप कितनी इंद्रिय तृप्ति कर लोगे, अगर आप ये सोचता है जो आज की भोग की संस्कृति है, ये टोटल भोग की संस्कृति है, इसमें क्या हो रहा है, सोचते हैं बस ये भोग जो है आहार खाने के लिए, अच्छे से अच्छे में खा लें, फाइव स्टार में खा लें, जो सामने पड़े उसी को खा लें बस। वो बोलते हैं हमने वो चीज खाई वो वहां से। आजकल जो है ह्यूमन फिटस तक भी आ गए, ह्यूमन फिटस मीन्स जो अबॉर्टेड बेबी होता है जिसको अबॉर्शन करवा के बच्चा निकलता है उसको खाने तक पहुंच गए। इससे डेलिकेसी ताइवान में मतलब ये शुरू हो गया है चीन में। तो वो सोचते हैं बस ये जीवन का लक्ष्य है, खा ले और सो ले अच्छे से, कहीं सो ले और सेक्स के पीछे बस, और उसके बाद फाइनली डिफेंस, डिफेंस के लिए लगे हुए। अरे भैया सारे डिफेंस जो है वो धरे रह जाएंगे, जब बुलावा आ जाएगा ना, गुरुपाद जी बोलते हैं नहीं मालूम कब आ जाएगा, तो वो जब बुलावा आ जाएगा तो कोई न्यूक्लियर मिसाइल, कोई सा ICBM, कोई पैट्रियट मिसाइल, इंटरसेप्टर मिसाइल कोई काम करेगा? सारे मिसाइल धरे रह जाएंगे, क्योंकि जिसने मिसाइल चलाना था उसी का काम हो गया। तो ये जो कहानी है ये क्या है, ये असत गया है, ये समय का दुरुपयोग है, मनुष्य जीवन का दुरुपयोग है ये। क्योंकि मनुष्य जीवन ही है जिसमें हम समझ सकते हैं कि मेरा धर्म क्या है और उस पर आचरण करके इस दुख जगत से बाहर जा सकते हैं। बाहर से यही दिखता है कि सुख के लिए सब कुछ किया जा रहा है, मनुष्य को सुखी बनाने के लिए ये सब जो डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, बोलते विकास हो रहा है, वो किसके लिए हो रहा है? मनुष्य को सुखी रखने के लिए। आप ये खरीदो ये खरीदो ये खाओ, माइक्रोवेव खरीदो ये खरीदो, कुकर आया, पहले कुकर ही बड़ा अजूबा होता था क्योंकि समय लगता था, तो धीरे 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 उसको किए जा रहे, खाओ पियो ऐसे। तो पर उससे क्या होगा, सुख नहीं दे रहे। हरेक चीज जो है प्रकाश जी बोलते हैं जो भौतिक समस्याएं हैं उनका भौतिक इलाज नहीं हो सकता है, उसका भौतिक समाधान हो नहीं सकता। आप कहीं भी देख लीजिए, किसी भी चीज से शुरू हो जाइए उसका दिक्कत आगे से आगे है। जैसे पहले क्या था, पैदल चलते थे, बैलगाड़ी चलते थे, बोले फास्ट हो जाना चाहिए, फिर कारें हुई, प्रिमिटिव सी कारें आपने देखा होगा, स्टेट्समैन विंटेज कार रैली में देखी होगी पुरानी कारें, कारों को किस स्लोगन पे कार आई थी, क्योंकि कार से पहले भाप का इंजन था, तो भाप के इंजन में कोयला भरते थे, कोयले से धुआं निकलता था, उसकी आवाज भी बहुत होती थी। तो ये जो कार इंट्रोड्यूस की गई तो क्या बोला गया, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। आज जब गाड़ी खड़ी करने को जगह नहीं है तो क्या स्लोगन है, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। अभी मेट्रो आ गई है, उसके बाद रैपिड मेट्रो भी आ रही है, थोड़े दिन में मेट्रो के लिए जगह नहीं रहेगी, नीचे नहीं चल सकते, ऊपर उड़ा लो, ऊपर से पोल्यूशन फ्री होना है क्या, ऊपर जहाज टकरा रहे हैं, और जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ेगी तो
क्या वो लक्ष्य प्राप्त हुआ? बोले सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभी तो कह रहे हो वो तो गदर कर दिया। कितनी गाड़ियां नाउ लेसर रोड मोर कार, और थोड़ी देर में देखना गाड़ी के लिए कल ये स्ट्रेस का सर्टिफिकेट मांगेंगे। ये होने वाला है, ये कोई प्रोफेसी नहीं है कि मैं कोई भविष्यवाणी कर रहा हूँ, भविष्यवाणी नहीं है, ये सामान्य बुद्धि की बात है। तो मेरे जैसा आदमी भी समझ सकता है कि थोड़े दिन में ऐसा है, कई जगह है संसार में ऐसा कई जगह है। वो आपसे कहते हैं पहले पार्किंग कहाँ करेगा, उसका सर्टिफिकेट देगा, उसे रक्त खड़ी करतेगा, अभी क्या हाल हो गया है आप देखिए, रेस्टोरों में जाइए कहीं भी देखिए, गाड़ी खड़ी करने को जगह नहीं है, झगड़ा होता है गाड़ी की पार्किंग के लिए। तो आगे यहाँ भी यही होने वाला है, अल्टीमेटली क्या सोल्यूशन होगा, कितने पास जगह है खड़ी करने को, तो ले लें जगह ही नहीं है तो क्या फिर लेके घोड़े डाल दो, नहीं मिलेगी, ये करना पड़ेगा। तो समाधान क्या हुआ? नहीं हुआ, बल्कि एक से दूसरा, दूसरे में तीसरा, तीसरे में चौथा, समस्या कंपाउंड होती रहती है, उसकी सुलझती नहीं है। समय के लिए दिया, समय बचना चाहिए, है किसी के पास समय? पैदल जाते थे और एक दिन कोई रुकता था तो नाराज होते थे, बस कल रात को आके किसी से आज सुबह सुबह चलती है, नहीं ये तो ठीक नहीं है। तो मेहमान आता था, पैदल चल के जाता था, एक दो दिन रुकता था ट्रेन से, बारात आती थी तो सात रोटी देते थे। आप लोगों को शायद नहीं मालूम हो जो इस जनरेशन के बच्चे हैं, सात रोटी, सात रोटी मीन्स फोर डेज। अब तुमको आना भी है, चार दिन रहना भी है बारात को, तो फिर वापस भी जाना है। कितने दिन का प्रोजेक्ट हो गया? सेवन डेज प्रोजेक्ट, आज सेवन आवर्स प्रोजेक्ट। समय किसके पास है? सात से पांच रोटी हुआ, पांच से तीन रोटी हुआ, तीन से दो हुआ, दो से एक हुआ, अभी एक रोटी भी नहीं है। है एक रोटी? बहुत सारे लोग तो नाश्ता करके फिर जाते हुए कहते यार पता नहीं किस तरह से शुरू करेंगे अपना, ये जो लगा है इसी को खाओ, अपने कल लोगों के लिए गली से बताना भी नहीं है, ये तो ये रोकेंगे, टाइम नहीं है। तो जिस टाइम को बताने के लिए प्रयास किया था वो कहाँ है? क्यों? क्योंकि दूसरी चीजों में बुद्धि भ्रष्ट करती है, जो लक्ष्य था वो छूट गया है। ये कलयुग का लक्षण है, लोग कहते हैं ये शास्त्र, ये प्रसार बहुत चल रहा है, जैसे मैं कह रहा हूँ ना दुष्प्रसार बहुत है, अब सिद्धांत बहुत चल रहे हैं, तो बोलते हैं ये ऐसे ही लिखा है, ये ऐसे ही लिखा है जैसे दूसरों की लिखी हुई किताबें हम पढ़ रहे हैं, हमारी लिखी हुई आगे पढ़ेंगे, ये शास्त्र ऐसे ही लिखे गए हैं और वो खूब धरने से चल रहा है, मतलब प्लेटिनम जुबली बना रहे हैं और जहाँ ये प्लेटिनम भी खत्म हो जाएंगे इतनी जुबलियाँ भी बनाएंगे, क्योंकि भी करीब 5000 साल बढ़ा है, 432000 साल का समय है उनको खुला है, फिर पता नहीं कौन कौन सी जुबली बनाएंगे, कम से कम मेरे को दिनों से नहीं आता कौन सी जुबली बनेंगे, ठीक है। और क्या बोलते हैं, ये शास्त्र जो है ये किसी भगवान भगवान किसी ने कुछ लिखा, दिस इज ऑल नॉनसेंस, ये हमारे तुम्हारे जैसे नहीं लिखा है। पर कोई उनसे ये पूछे कि हमारे तुम्हारे जैसे वाले को 5000 साल पहले ये कैसे मालूम था कि 5000 साल बाद यहाँ पे क्या स्वरूप होने वाला है? कोई साइंस है कहीं, कोई रिकॉर्ड है ऐसा? क्या पीछे बहुत पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है, 125 साल पहले मेडिकल साइंस को ये नहीं मालूम था कि जीवात्मा पेट में जो बच्चा आ जाता है तो वो कैसे बढ़ रहा है, कैसे कैसे डेवलप हो रहा है, नहीं मालूम था। कब मालूम चला? जब थोड़ा सा ये इमेजिंग का कुछ इनके हाथ में आया, इमेजिंग आप समझते हैं अल्ट्रासाउंड या एक्सरे, जिससे इमेज निकलता है जिसमें आप देख सकते हैं जो शरीर को भेज सकते हैं, तब इनको पता चला। उससे बाद धीरे 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 अब तो जैसे अब उस फसाद का भी देख लो, अब लिंग जांच होने लगी तो लड़कियों को मार दो, मतलब होना तो कर्म ही है, क्योंकि असत कृष्ण है, असत वह है, उसका रिजल्ट क्या होने वाला है, उसका रिजल्ट उत्पाद ही होने वाला और कुछ नहीं होने वाला। तो डॉक्टरों को मालूम नहीं था। श्रीमद् भागवतम में एक पूरा चैप्टर है, मुझे अभी याद नहीं है, गुरु जी शायद बता पाए किसमें है पूरी चर्चा, और ये मैं आपको सिर्फ एक में नहीं है जी, मैं खुद बता रहा हूँ। मेरे पास एक इस्लाम पर एक पुस्तक है जो इम्पोर्ट हुई थी, दिस इज द ट्रुथ करके, उसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया है कुरान से। उस कुरान में भी ये, कुरान में भी ये वर्णित है, ये भी मैं आपको बताऊँ, ये मैंने खुद पढ़ा है, है? हाँ नहीं, ये तो सिर्फ भागवतम में है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें देखिए, जो धर्म के मार्ग पर होगा वो कभी भी कट्टर नहीं होगा। एक ये पहला टेस्ट है जो किसी की सुनना नहीं चाहता, जो अपने दिमाग के खिड़की दरवाजे बिल्कुल फेविकॉल से सील करके घूम रहा है। जो कट्टर होगा वो धर्म के मार्ग पर नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म कट्टरता नहीं सिखाता, धर्म सहिष्णुता सिखाता है। सारी बात ठीक है, इसी भी सुनो तो इस्लाम में ये कुरान शरीफ में लिखा है, मैंने उसका अनुवाद पढ़ा है, अंग्रेजी में अनुवाद है उसका, मैंने वो पढ़ा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी में, मैं लिया था व्हाट इज द ट्रुथ लेट मी फाइंड आउट। तो उसमें लिखा है कि कैसे कैसे जीव पनपता है, बच्चा कैसे माँ के पेट में पनपता है, ये श्रीमद् भागवतम में लिखा है। क्या कोई कह सकता है, आप श्रीमद् भागवतम को छोड़ दीजिए, लेट अस लीव इट, कि वो 5,000 साल पहले नहीं लिखा, झूठा प्रपंच का क्या है, कुछ भी बोले। इस्लाम तो हमारे सामने आया है, मात्र 15वीं सदी चल रही है मोहम्मद साहब को, तो कम से कम ये बात को कोई भी किसी को भी माननी पड़ेगी कि 1500 साल तो 1400 साल तो हो गया कुरान शरीफ को। उसमें लिखा है, ऐसा कौन था जिसने 1400 साल पहले ये जान लिया। तो हमारे साइंटिस्ट जो आज के कहते हैं साइंटिफिक टेंपर डेवलप करिए, साइंटिफिक टेंपर डेवलप करिए एंड गो स्ट्रेट टू हेल्प, साइंटिफिक टेंपर डेवलप करिए बट साइंटिफिक टेंपर का एनालिसिस नॉट फॉर नॉनसेंस। साइंटिफिक टेंपर का मतलब क्या है, वी शुड बी एबल टू एनालाइज द थिंग्स इन प्रॉपर पर्सपेक्टिव, दैट इज द साइंटिफिक टेंपर। ऐसे थोड़ी कि जो नॉनसेंस वो कह रहे हैं वो आप करिए, जो हम कह रहे हैं वो मानिए, दैट इज साइंटिफिक लेस, एवरीथिंग इज अनसाइंटिफिक। कृपा की डंके के तौर पर कहते हैं दिस नॉलेज इज 100% साइंटिफिक and this is the ultimate knowledge, this will lead you somewhere, not somewhere, at your proper place। और वो जो है वो आपको कहाँ लेके जाएगा, रसातल में तलातल में पता नहीं कहाँ, वो आपको घुमाए रखेगा। क्या साइंटिफिक है, एक सेंस थी जब बोलते थे अगर पानी तो अगर जल जाए आप तो पानी का प्रयोग ना करें, ये बिल्कुल निषिद्ध था। आज का साइंटिफिक तंत्र है जैसे ही जल जाए तुरंत चिल्ड पानी लें उसको और उस फाये को तब तक घुमाते रहें जब तक आपकी जलन शांत नहीं हो जाए। और ये मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, मेरा अनुभूत है, आई हैव मेडिकल बैकग्राउंड ऑल्सो, कि मेरा हाथ मेरे एक हमारे मित्र नाले पर से क्रॉस कर रहे थे तो उनका मोटरसाइकिल चिल्ड हो गया, तो उससे झूल गया वो दोस्त को लगा हुआ था, तो मेरे को हमारे क्लासी ने आके बताया सर वो उनका वो नाले में गिर गया है, अरे मेरे का नाले में गिर गया है, तो दौड़ के गया देखा वो तो नाले में नहीं गिरा था वो टूट गया, तो उसका मोटरसाइकिल जो है जो पुल था उसके ऊपर थोड़ा सा उसके ऊपर झूल रहा था और जोश में होश नहीं होता है या बद हवासी से कह लो थोड़ा सा ये लगा एकदम थोड़ा हिले, तो मैंने उसको बताया निकाल मोटरसाइकिल को तो निकाल और वो ध्यान दे रहा मैंने साइलेंस पकड़ लिया देखिए प्रसाद जो था उसके पास हाथ देखिए मेरा, तो मैंने तुरंत कूलर में ऑफिस के कूलर के सामने हाथ किया और शाम को घर जाके बस खरीदे, उसको फ्रिज वगैरह नहीं था, मैं अकेला था सिंगल था, शायद मेरी शादी भी नहीं हुई थी या हुई भी होगी, तो मैंने बस खरीदी डिपो से जाके और 1 किलो बर्फ पूरी अपनी मुट्ठी में पिंघाल दी। अब जब मैं सुबह उठा तो सामान्य कार्यकलाप में लगे, फिर मुझे एक चीज भी ध्यान आया, आपको मेरा हाथ चला था वो कहाँ है, हाथ जलाई थी क्योंकि ये चमड़ी जैसे भी थिक होती है, ये बोला सारी जो थिन स्किन है उस पर उतना कारगर नहीं होगा, पर यहाँ पे क्योंकि ये चमड़ी थी थिक होती है तो जितना जला था उसने सारा रिवर्स कर दिया। तो क्या है कि जो शास्त्र बोलता है कि मनुष्य का स्वभाव है गलती करना, मैं ये नहीं कह रहा कि साइंसदानों ने गलत किया कि जो अपना पहले उनका जो मूर्खतापूर्ण फैसला था उन्होंने उसको बदल दिया, उसमें गलती नहीं थी, पर ये क्या इस चीज से निष्कर्ष क्या निकलता है कि हमारी जो बुद्धि है हम स्वभावतः गलती करते हैं क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। ये जो चार गलतियां चार कमियां हैं जीव में, उन चार कमियों में से एक है कि हम गलती करते हैं, तो गलती उन्होंने सुधार ली, आप सुधार ली और बिल्कुल परफेक्ट है। तो पर इसका मतलब क्या है कि इधर नहीं जाएंगे, आध्यात्म की तरफ नहीं जाना है। ये लिखा है श्रीमद् भागवत में, क्या जीव कैसे होंगे, प्रायण अल्पायुष सभ्य कलव युगे जन मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपस्थित होगा। कैसे होंगे, मंदा सुस्त आलसी, अभी आप देख मेरे को बताने की जरूरत नहीं, सब कुछ रिमोट पे हो जाए, और जिनको हो सकता है रिमोट से प्रसाद पाने का प्रयास भी करें, क्योंकि सब कुछ तो रिमोट से हो जा रहा है, गाड़ी खुल जाती है, पंखा चल जाता है, एसी चल जाता है, दरवाजे खुल जाते हैं, सब धीरे धीरे हो रहा है, उतना नहीं करें। आलसी तो है, काम करवा के देखो आप किसी को ये काम करते हो, उसने का दिल नहीं करता। और अल्पायु, अल्पायु होंगे, रूपाजी बोलते हैं 100 साल की उम्र कलयुग के लिए है, पर तो बर्बाद कर लेंगे उसको, आयु धीरे धीरे कम हो जाएगी। और सुमंत मत बुद्धि जो है वो कम होगी, कैसे कम होगी, उल्टे कामों में तेज हो जाएगी, जो वास्तविक है उसकी तरफ कम होगी, किसी को कह के देखो समय नहीं है तो अरे चलती तो है, और ऊपर से दुष्प्रचार है, ये ऐसे ही है, ये किसी ने नहीं लिखा, भगवान भगवान ने कुछ नहीं लिखा, हम तो कह रहे हैं वो भगवान है, भगवत गीता भी उन्होंने ही बोली है, कृष्ण को एक भोंपू थे, बस बोली उन्होंने अंदर से, अरे ये तुम्हें किसने बताया, हाउ टू कम एट दिस कंक्लूजन, वो तो कहते हैं तो भगवान है, शास्त्र को नहीं मानना, तो तुम जो कह रहे हो हमारे ये ब्रह्मा है ये भगवान है, ये कहां से आ रहे हैं, ये तुम्हारी क्रिएशन है क्या, बुद्धि नहीं लगाते, ये क्या है, ये सुमंत मतयो, ये भी सुमंत मतयो है, उधर बड़े लोगों की लाइन लगी हुई है, धड़ल्ले से चल रहा, थोड़ा सा भी मूल्यांकन नहीं कर सकते भाई, जिस चीज पर तुम अपना आधार बना के चल रहे हो, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो क्या तुमने बनाए हैं, वो तो शास्त्र की पैदाइश है, शास्त्र के बाहर ब्रह्मा विष्णु महेश कहां है, किसने लिखा है, ये कोई उर्दू चल रहा था हैरी पॉटर, ये कोई हैरी पॉटर थोड़ी है, ये उन्होंने एक कर दिया, और वो भी क्या है, वो भी इंसान की नहीं है, क्योंकि जीवात्मा पता नहीं कहां था, उसको कहां की स्मृति हुई, जो लिख रहा है वो पता नहीं कहां था पिछली बार, उसको स्मृति रह जाती है गुरु ग्रंथ की, ऐसा मैंने पढ़ा था कि वो तो उसने वर्णन किया है, कोई जगह है ऐसे कहीं पे उससे मिलता जुलता लगभग ऐसा है, तो स्मृति भी अपनी नहीं है, तो सिर्फ समय जो है वो बर्बाद करते हैं। शास्त्र कहता है कि सिर्फ भगवान से जो संबंधित है, यहां पे चर्चा यह चल रही है कि जो कुछ भगवान से संबंधित है वही कल्याणकारी है, उसके सिवाय क्या है, बाकी सब समय का अपव्यय। एक कथा, क्योंकि समय हो गया है, इसको टॉपिक ऐसा है तो इसके ऊपर कितना बच्चे बोलते रहे, मैं जो होमवर्क करके लाया था उसका नंबर तो लगा नहीं, क्योंकि उसको लेंगे तो बहुत समय हो जाएगा, तो और उसमें एक कथा जो है वो मैं आपको सुनाता हूँ, बहुत सुंदर कथा है। एक संत थे, उनको 4 लोग मिले अलग अलग जगह, तो पहले राजपुत्र मिले, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, राजपुत्र चिरंजीवा चिरंजीवा। उसके बाद जो है वो किसी मुनि के पास गए, तो उसको आशीर्वाद दिया, मुनि पुत्र मां जीवा मां जीवा। तीसरी जगह जो है एक बूचड़ के पास गए, उसने भी आशीर्वाद मांगा, तो उसको आशीर्वाद क्या मिला, मां जीवा मां मरा। चौथे में एक साधु के पास गए, साधु का अर्थ क्या है, साधु का अर्थ तो भगवान वस्त्र धारण करे वो नहीं है, वो स्वाधु हो सकता है, साधु भी हो सकता है, दैट इज नॉट रूल्ड आउट, बट स्वाधु हो सकता है, विशेषकर इस कलयुग में पूरी पॉसिबिलिटी है। तो साधु का अर्थ है तो स्वभाव से साधु हो, जो साधु जैसा आचरण करे, भगवान का नाम लेने का प्रयास करे, जीवन से निकलने का प्रयास करे। तो उनको क्या आशीर्वाद मिला, जीवा वा मरेगा,
मेरे जैसा सुख से उनके साथ था। भाई आज हो क्या रहा है, तो समझ में नहीं आई बात। तो उन्होंने पूछा कि आपने राजपुत्र को बोला चिरंजीवी चिरंजीवी, और मुनि पुत्र को बोला माँ जीव माँ जीव है, चिरंजीवी का अर्थ चिरंजीवी रहो, माँ जीव का अर्थ होता है माँ जीव अर्थात मर जाए। भूषण को क्या बोला, माँ जीव है माँ मरा, माँ का अर्थ होता है नहीं, संस्कृत में माँ है नहीं, तो ना जिए और ना मरे, ये कैसे स्थिति हुई। वो साधु को बोला जीवा वा मरा वा, चाहे जिए चाहे मरे फिर बस्ती, ये किस तरह का आशीर्वाद है। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या है, आपने आज ये क्या बोला, मुझे तो नहीं समझ आया। किरण जीवा राजपुत्र को बोला किरण जीवे, तो उल्टा उल्टा हो रहा है। तो उन्होंने कहा राजपुत्र क्या कर रहा है, खाओ पीवा शुभ मित्रो, तो इसका भविष्य तो बहुत धूमिल है, इसलिए तुम्हें जितने दिन है यहाँ जिए ही, क्योंकि मर के तो अधम लोकों में जाने वाला है, इसलिए जिए जितने दिन जिए जिए। तो मुनिपुत्र क्यों मरे, अरे भैया वो तो मुनिपुत्र है, इसलिए शरीर छोड़ते ही भगवत धाम जाना है, तो जाएगा जल्दी से यहाँ क्या कर रहा है, इसलिए समझे। तीसरा बोला भूषण को माँ जीवा ना मरा, कि ना जिए और ना मरे, तो ये क्या हुआ, बोलो अभी क्या कर रहा है, अभी उनको कर्म कर रहा है, जीव हत्या कर रहा है, तो अभी अभी भी कुछ अच्छा नहीं कर रहा है, और ये अगर मर भी जाएगा तो इससे भी बुरा होने वाला है, तो इसलिए धार्मिक एक से डिफरेंस, चाहे वो जिंदा रहे चाहे मरे, वो तो नरक नहीं है, अभी भी नरक नहीं है और आगे भी नरक में जाना है। तो फाइनली साधु के ये हुआ कि जीवा वा मरा वा, चाहे जिए चाहे मरे, किसका क्या हुआ, वो तो भगवान की सेवा कर रहा है, कृष्ण कथा करता है, भगवान के साथ सारा काम जो है वो भगवान के लिए करता है, रोटी भी खाता है तो भगवान के लिए, सोता है तो भी भगवान के लिए, कुछ भी करता है भगवान के लिए, भगवान का प्रचार करता है। तो उसको क्या फर्क है, उसने ये यहाँ भी करना है और वो वहां भी करना है, जिगर स्वरूप है कृष्ण दास महाप्रभु बोलते। तो दास का काम क्या है, सेवा करना, भगवान की सेवा कर रहा है, इंद्रियों की सेवा नहीं कर रहा, भगवान की सेवा कर रहा है, तो यहाँ भी उसने भगवान की सेवा करनी है, और शाश्वत धाम में भी चला जाएगा तो वहां भी भगवान की सेवा करनी है, तो वो चाहे जिए चाहे मरे क्या फर्क पड़ता है। तो तब जाके वो बात हुई। इससे आगे जो है सिर्फ एक ही बात चाणक्य पंडित की बात के साथ मैं इसको संपन्न करूंगा, कि चाणक्य पंडित बोलते हैं आयु से क्षण एको अभी ना लभ्य स्वर्ण कोटि भी, ये जो जीवन का एक क्षण करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देके भी लौटाया नहीं जा सकता है, बढ़ाया नहीं जा सकता है। तो साइंस ने ऐसा कुछ किया है, वो बोलते हैं ऐसे लॉन्जेविटी लॉन्जेविटी, दिस इज अ सोशा लॉन्जेविटी, क्या लॉन्जेविटी है, जिस दिन उसने डोरी काट दी, जिस दिन दी जिस क्षण सारी लॉन्जेविटी पूरी रह जाती है। अब ये क्या करते हैं, जो हो जाता है उसको एक्सप्लेन करते हैं बाद में, ये ऐसे हुआ वो वैसे हुआ। अंग्रेजी में कहावत होती है एवरीबॉडी इज वाइजर आफ्टरवर्ड्स, क्योंकि अब जो होना था वो तो हो गया, उसके बाद बोलते हैं तूने ऐसे क्यों नहीं किया, ये हमारी प्रवृत्ति है, बाद में बोलते हैं एवरीबॉडी इज वाइजर आफ्टरवर्ड्स, पहले बोलते तो कोई बात थी, फिर पहले बताते तो बुद्धिमान होते, जब हो गया तूने ऐसा क्यों किया, तूने वैसा किया, तूने ये किया इसलिए ये हुआ, वो तो दिख ही रहा है, इसलिए तूने क्या नया बता दिया। एक कहीं पे एक मर्डर हुआ तो इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस आई, तो उन्होंने बोला भाई इस कत्ल के बारे में किसी को कोई जानकारी है तो वो कृपया बताएं। उन्होंने सामान्य जन में घोषणा की, एक मेरे जैसा था पहुंचा, बोला हाँ जी थाना दादा मुझे मालूम है, हाँ तो बताओ मुझे क्या इंफॉर्मेशन है, बोला ये काम जरूर किसी कातिल का है,
क्या जानकारी है, अगर कतल हुआ है तो काम तो किसी कातिल का ही है। तो ऐसे उसको बोलते हैं, ये साइंटिफिक है, इसलिए ये बदलता रहता है। पर शास्त्र में जो लिखा है वो बदला है, यहाँ कोई अमेंडमेंट नहीं चाहिए। कृपा जी बोलते हैं मूर्खों का राज है, शूद्रों का राज है। जब शूद्र को बिठा दिया जाएगा, 150 बार संविधान में संशोधन हो चुके हैं। ये जो संविधान है ये, क्योंकि ये भगवान ने दिया है, भगवान शाश्वत है और ये संविधान भी शाश्वत है, इसमें कोई अमेंडमेंट आया? कोई अमेंडमेंट आएगा भी नहीं। ये त्रिपाठी से एक बार पूछा था, भगवदगीता तो 5000 साल बोली गई थी पहले, आज तो वो इरेलेवेंट हो गई है, इज टोटली ऑब्सोलीट। त्रिपाठी ने कहा हाँ आपके ख्याल में ठीक है, तो मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, आप बताएं। तो कौन सा श्लोक त्रिपाठी ने बोला? अन्नाद भवंति भूतानि पर्जन्याद अनुसंभव है, यज्ञात भवती पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव है। तो मुझे ये बताएं, 5000 साल पहले लोग अन्न खाते थे, तो यहाँ आज क्या खाते हैं? हम बुलाया था तुम्हें कि नट बोल्ट खाने लगे हो, आपकी फैक्ट्री में जो बन रहा है वो खाने लगे? बोले नहीं। तो अन्न कैसे होता है? 5000 साल पहले कैसे होता था? वर्षा से। आज कैसे होता है? आपने कुछ कर लिया? समुद्र का पानी उसको सोच नहीं सकते, पानी तो बहुत है, वाटर वाटर एवरीवेयर, बट नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक, है कि नहीं? 3/4 तो पानी है, आपने क्या कर लिया? फिर किस लिए लोग मर रहे हैं, किस लिए जूता बचता है पानी के लिए? कर्तव्य में लेते वो भी बरसात से आता, तो आज भी बरसात से अन्न होता है? हाँ बोले होता। तो बरसात कैसे होती है? बरसात यज्ञ से होती है, यज्ञ कर्म से है। तो इसमें कुछ बदला है? इसमें तो कुछ नहीं बदला। एंड हाउ डू से दैट गीता इज ऑब्सोलीट? तो चाणक्य पंडित बोलते हैं, जीवन का एक क्षण भी, स्वर्ण कोटि भी, करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं देने के बाद भी नहीं लौटाया जा सकता। एक एक क्षण कीमती है, कोई भी आदमी समझ सकता है। तो जीवन की एक क्षण की कीमत क्या है वो आंकी नहीं जा सकती। दैट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन, बियॉन्ड कैलकुलेशन। और उसको लगा रहे हैं इधर उधर लगे पड़े। आपने गुब्रेला देखा? सभी लोग समझते हैं गुब्रेला, जो गोबर का एक कीड़ा होता है, आपने इस बरसात में खूब मिलेंगे। वो क्या करते रहते? दो इकट्ठे हो जाते और एक गोबर की एक गोली बना लेते और उसको लिए घूमते रहते। एक बच्चे खेल रहा है, एक बच्चे खेल रहा है, दो लगे होते हैं दोनों तरफ। अगर दूसरा नहीं हो तो एक ही शुरू कर लेता, दूसरा उसके बाद मिल जाता, तो वो उसके लिए घूमते रहते। बस हो गया। हम क्या कर रहे हैं? यार आपसे बेहद लाइक गुब्रेला, गोबर की गोली बना ली है, उसके लिए घूम रहे, गोलियां मिल रही है, गोलियां खा रहे। सारे जगत में गोलियां ही गोलियां, गोली देने वाले, गोली खाने वाले। गोली देने वाले की तो बहुत, गोली खाने वाले की उसकी तो ऐसी की तैसी हो रही है। इसलिए इस सब में कुछ नहीं रखा, एक ही मार्ग है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। बस यही शाश्वतता का मार्ग है, और कोई मार्ग ना मिला किसी को और ना मिलेगा। तो समझदार कौन है? कृपा जी बोलते हैं, समझदार वो है जो गधे की लात पड़ते देख के समझ जाए। जो गधे की लात खा के माना वो तो गधा ही है, और हम कौन सी कैटेगरी में